में भी देखो, जीत कर वैराग्य को प्राप्त करना मुश्किल है, हारने वाले को वैराग्य हो जाए, संसार से उदासी हो जाए, वो तो संभव है, लेकिन ये एक ऐसा नमूना है कि बाहुबली भरत को जीतने के बावजूद संसार की असारता का विचार करते हैं और अंदर ही अंदर विरक्त होकर संन्यास धारण कर लेते हैं। और चिंतकों का ये कहना है, बड़े बड़े महान विद्वानों का, आजकल के छोटे छोटे फुटकर विद्वानों की बात नहीं है, पुराने जो बड़े विद्वान थे, जो वाराणसी से वर्णी जी की कृपा से विद्वान बने थे, स्याद्वाद महाविद्यालय में जिन्होंने गहन अध्ययन किया था, उन विद्वानों में ये एक बात आई थी कि भरत के बारे में एक प्रसिद्ध है, घर में वैरागी। तो वो घर में वैरागी, इसका तात्पर्य क्या है? और घर में कहाँ से वैरागी हो गए वो? तो उसका समाधान उन्होंने ये निकाला, पंडित जगनमोहन लाल जी का कहना ये था कि जब बाहुबली संन्यास धारण करते हैं तब भरत चक्रवर्ती बन जाता है, देवताओं के द्वारा भरत का राज्याभिषेक होता है, लेकिन उस समय भरत का अपना सगा कोई नहीं बचता। क्यों? क्योंकि सारे भाई बहने और पिता आदि सारा कुटुंब संन्यास मार्ग पर चला जाता है, अकेला भरत रह जाता है। अब आप कल्पना करिए कि जिसका सारा कुटुंब छोड़कर चला जाए, वो अगर चक्रवर्ती भी बन जाए तो क्या सुख है? अरे अगर अपना एक बेटा चला जाए और अपनी लॉटरी खुल रही हो तो भी मन भारी रहता है, लॉटरी खुल गई क्या फायदा, बेटा तो चला गया, ये दशा रहती है। तो जिसका सारा परिवार चला गया वो चक्रवर्ती बन गया, क्या मतलब उसके जीवन में क्या सुख रहा? सिर्फ इन जड़ पदार्थों का सुख, सिर्फ नौ निधियां 14 रत्नों का सुख, सिर्फ हाथी घोड़े रथ प्यादे सेना और दूसरे जो कहीं रिश्ते में नहीं लगते, ऐसे 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी सेवा कर रहे हैं, परिवार तो कुछ नहीं है। ठीक है रानी आई है कहीं बाहर से, लेकिन अपना निजी कौन है? और जब बाहुबली जाने लगे तब भरत ने सिर्फ एक बात कही, तुम भी चले जाओगे मुझे छोड़कर। बाहुबली ने कहा कि भैया बस इसी मोह जाल का नाम संसार है, आज मैंने संसार की असारता को देख लिया, मैं जीता जरूर लेकिन मैं अयोध्या का राजा नहीं बन सकता, आप ही इस चक्रवर्ती पद को संभालिए, जिस चक्रवर्ती पद के कारण आपने प्राणों से प्रिय मुझ जैसे भाई के साथ युद्ध करने का निर्णय किया, इस संसार में सार कहाँ रहा? नियोग है, आपको तो संभालना ही पड़ेगा, आप अभी दीक्षा नहीं ले सकते लेकिन मुझे मत रोकिए। तब भरत फिर सम्यक दृष्टि तो थे ही दोनों जीव, भरत उनको रोकते नहीं है, जाने देते हैं और बाहुबली जा करके सबसे लंबा कायोत्सर्ग धारण करते हैं। पूरे इतिहास में पुराण पुरुषों की कथाओं में केवल दो नाम आते हैं जिन्होंने इतना लंबा कायोत्सर्ग किया, 12 महीने का कायोत्सर्ग, केवल दो नाम आते हैं, एक बाहुबली और दूसरे शांतिनाथ तीर्थंकर। जब अपनी वज्रायुध पर्याय में थे पूर्व जन्मों में, तब वो भी 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग में खड़े रहे। भरत को आश्चर्य होता है कि क्या बात है, इतनी तपस्या करने वाले को तो क्षण मात्र में सब कुछ प्राप्त हो जाना चाहिए, ऐसे तपस्वी को तुम आधे क्षण में केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? तब ऋषभदेव भगवान के पास जाकर पूछते हैं, क्या बात, मेरे भाई जैसे वैरागी और कठोर तपस्वी बाहुबली मुनिराज बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारी हैं, लेकिन केवल ज्ञान से रहित, इतनी तपस्या करने के बावजूद क्या कारण है कि वो अटक रहे हैं कहीं? तब भगवान क्या कहते हैं, बोलो, आप लोगों ने सुना है ना,
इसका काफी जोर शोर से प्रचार है,
ये चर्चा जरूर आपके कानों में भी कभी पड़ी होगी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। लेकिन आचार्य जिनसेन स्वामी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया, आदि पुराण में कहीं कथन नहीं आया कि बाहुबली के मन में ऐसा विचार आ रहा है कि भरत की भूमि पर खड़ा हूं। वो महामुनि हैं, उनके अंदर ऐसा विचार आना भी मुश्किल है, और जिनको विपुलमति मन परिज्ञान होता है वो प्रवर्धमान चारित्र के धारक होते हैं। अभी सर्वार्थ सिद्धि में आएगा वो विषय, विशुद्ध प्रतिपाताभ्यान तद विशेष। तो क्या प्रवर्धमान चारित्र माने कि वो जिस संयम का पालन कर रहे हैं, छठे गुणस्थान में, सातवें गुणस्थान में, छठे में, सातवें में, ये क्रम चालू है, लेकिन कभी लौट कर अपने पुराने संयम स्थान को वो प्राप्त नहीं होते। जो पुराने संयम लब्धि स्थान है उनका वो स्पर्श नहीं करते। इसके लिए हम ये उदाहरण देते हैं आप इन हाथों का, ये है दाहिना और बायां हाथ है, इसको अपन एक हाथ को सप्तम गुण स्थान मान लो, एक को छठा मान लो, क्योंकि ये क्रम तो नियामक है, प्रमत अप्रमत, प्रमत अप्रमत, ये साधु के जीवन में चलता रहता है क्रम। और जो भरत ने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया था मुनि पद धारण करके और फटाक से हो गया था उनको, तो उसमें भी षटखंड आगम में उल्लेख है कि हजारों बार वो भी छठे सातवें गुणस्थान में उतने कम समय में चले गए थे, हजारों बार, एक दो बार नहीं, हजारों बार। तो जैसे ये स्थान है, इसमें मान लो यहां पर कोई मुनि है, या फिर पहले तो सातवा होता है, तो ये है यहाँ विपुलमति ज्ञान हो गया कोई मुनिराज को, अब थोड़ी देर बाद छठे में तो आना ही पड़ेगा, तो ये यहाँ पर आ गए, फिर उसके अगली बार फिर सातवें में जाना होगा, तो सातवें में जहां जा चुके हैं वहां नहीं जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे, इसको कहते हैं वर्धमान चरित्र। और फिर अब फिर वापस छठे में जब भी आएंगे तो जहां स्पर्श कर चुके हैं वहां स्पर्श दोबारा नहीं करेंगे, ये यहां आ जाएंगे। इस प्रकार ऐसे ये जो अब ये तो हाथ में तो चार उंगलियां हैं, संयम लब्धि स्थान जो होते हैं छठे सातवें गुण स्थान से संबंध रखने वाले, वो असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। तो असंख्यात लोक प्रमाण संयम लब्धि स्थानों में वो हजारों वर्ष रह जाए तो भी कभी पुराने स्थान का स्पर्श नहीं करते। तो एक वर्ष तक बाहुबली भगवान मुनि अवस्था में खड़े रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने संयम के निचले स्थान का स्पर्श नहीं किया जो पिछली बार स्पर्श कर चुके थे। कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी आत्मा इतनी पवित्र थी कि वो केवल विकास ही विकास कर रहे थे, कहीं से भी किसी दृष्टि से उनके अंदर ह्रास नहीं था। इसलिए आचार्य जिनसेन स्वामी कहते हैं कि उनके अंदर ये विचार तो आया ही नहीं कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। फिर क्या कारण था कि वो केवल ज्ञान से वंचित हो रहे थे? तब भगवान ने कहा कि उनके मन में बीच बीच में एक विचार उठ आता है कि मैंने इतना निर्मल संन्यास धारण किया है और मेरा पूर्व काल भी बड़ा पुण्य संपन्न रहा है, मेरे पिताश्री ने दीक्षा धारण करके तीर्थंकर पद प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में एक कलंक, एक कालिख लगी हुई है। वो ये है कि आज मैं पूर्ण अहिंसा को पालन करता हूं, पर दीक्षा से अंतर मुहूर्त पहले मेरे निमित्त से किसी को असहनीय पीड़ा पहुंची। बस इतना विचार बार बार आ जाता था मन में। वो भी छठे गुणस्थान में आते थे तो विचार आता था कि मेरे कारण भरत को बहुत पीड़ा पहुंची। एक तो भरत पराजित हुआ तब पीड़ित हुआ, और फिर जब मैंने घर छोड़ा तब भी उसको दुख हुआ था। लेकिन घर छोड़ते समय जो दुख हुआ वो एक अलग बात है, पर युद्ध के कारण, मुझे जरूरत क्या थी युद्ध करने की? जब मुझे इसी भाव से मोक्ष जाना, मंत्रियों ने कह दिया था कि आप दोनों चरम शरीर हो, युद्ध में आप दोनों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जो सैनिक है वो व्यर्थ में मारे जाएंगे, इसलिए आप दोनों ही आपस में निर्णय कर लो हार जीत का। तो वो चीज बाहुबली को बीच बीच में खटकती थी कि उसकी क्या आवश्यकता थी। मुझे संन्यास धारण करना था तो संन्यास धारण करने के पहले युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी, और बड़े भाई को हरा कर मुझे क्या मिला? केवल उसी को तो कष्ट हुआ, और उस कष्ट का स्मरण करके आज लगता है कि नहीं, यदि मैं उतना कष्ट भी न देता किसी को तो अच्छा होता। तो जैसे ही ये जानकारी मिलती है भरत को, तो भरत को लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। भरत तत्काल वहां पहुंच जाते हैं जहां बाहुबली विराजमान थे। उनके शरीर से अक्सर लताएं लिपट जाया करती थी, क्योंकि खड़े हुए हैं साल भर से, तो लताएं ऐसे लिपट जाती थी। कभी चीटियां बामियां बना लेती थी, बामियों में सर्प रहने लग जाते थे। चंदेरी में जो खंदार गिरी है वहां पर बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा है उस पर बिच्छू चढ़े हुए हैं, तो छिपकलियां चल रही है। बहुत विशिष्ट प्रतिमा है वहां पर, बहुत पुरानी। तो वो तो रहता ही है सहज रूप से। तो भरत भी देखता है कि क्या तपस्या है। माधवी लता उनके शरीर से लिपट कर कहां ऊपर तक के चढ़ गई, और फिर उसमें फूल भी लग गए हैं। माने इसको यही कह सकते हैं कि जस्ट इमेजिन, सिर्फ कल्पना करके देखिए कि क्या साधना रही होगी उनकी। एक घंटे खड़े रहना मुश्किल है, आधे घंटे बैठना मुश्किल है। सुबह पता चलता है कितने महान तपस्वी हैं। तब भरत ने उनकी पूजा करना प्रारंभ किया, और पूजा में जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया उसमें वो उतनी सी जो संज्वलन कषाय थी, आचार्य कुंदगुण स्वामी ने उसको मान कसायण कलुसियो धीर, वो मान कषाय थी, संज्वलन मान, बहुत बारीक मान कषाय। मेरे कारण उनको कष्ट हुआ, मेरे कारण, ये जो मान कषाय बहुत बारीक मान है, उसको द्रव्यलिंग नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो मान भाव लिंग में पाया जाता है। सुन रहे हैं आप ध्यान से, बाहुबली मुनिराज द्रव्यलिंगी नहीं थे, भावलिंगी मुनि थे। और द्रव्यलिंगी को मन परे ज्ञान कहां से हो जाए, ये भी तो बात है, और वो भी विपुलमति मन परे ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान भी था उनको, श्रुत केवली पद भी था उनके पास, क्या क्या नहीं था, इतनी सारी रिद्धियां थी कि कोई हिसाब नहीं। उनके शरीर को छूकर बहने वाली हवा जिस तरफ चली जाए वहां सब निरोग हो जाए। उनके आसपास जानवर जाति विरोध माने जन्म का जो वैर है उसको त्याग देते थे, और जब विद्याधर वहां कहीं आ जाते थे उस स्थल के निकट, तो वो भी अचंभित हो जाते थे कि शेर चमरी गाय की पूंछ में फंसे हुए कांटों को निकाल रहे हैं। शेर अपने पंजे से, चमरी गाय होती उसके बालों से वो चंवर बनते हैं, और उसको अपने पूंछ के बाल बहुत प्यारे होते हैं, और उसी में कई बार उसका प्राणांत हो जाता है, कभी कांटे फंस जाते हैं उसमें तो वो वहीं ठहर जाती है, और तब तक कोई शिकारी जानवर आकर के उसको खा लेता है। लेकिन वहां एक अचंभा ये था कि जहां बाहुबली मुनि विराजमान थे, तो वहां पर चमरी गाय की पूंछ में फंसे हुए कांटों को वो शेर धीरे धीरे अपने पंजे से सुलझा करके उसके बालों को खराब नहीं होने देता था, धीरे से उन कांटों को अलग कर देता था। फिर वो गाय प्रसन्न होकर के वन में विचरण करती थी, शेर अपने रास्ते चला जाता था। ये निर्ग्रंथ मुद्रा का ही तो प्रभाव था। तो भरत जब पूजा करता है तो उस पूजा में भरत ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, पूजा में भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान का प्रकटीकरण पूजा में अनावश्यक है। आप कितने ज्ञानी हैं इसकी जानकारी पूजा में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूजा में अपनी भक्ति प्रकट होनी चाहिए। जिनेंद्र अर्चना नाम की एक पुस्तक है, उसकी प्रस्तावना में बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जिनेंद्र भगवान की अर्चना में तर्क नहीं होते, और जहां तर्क है वहां अर्चना नहीं होती। अर्चना में तर्क नहीं और तर्क में अर्चना नहीं हो सकती, क्योंकि अर्चना भक्ति का विषय है और तर्क बुद्धि का विषय है। आप भगवान के सामने अगर बुद्धिमान बनकर आते हो तो भक्ति कैसे होगी, भगवान के तो सामने आप अज्ञानी बनकर जाइए कि हे भगवान मैं कुछ भी नहीं हूं, ये सारी लौकिक डिग्रियां और मेरा सारा अध्ययन कोई मायने नहीं रखता, कहां आप केवल ज्ञानी और कहां मैं अज्ञानी। जब तक अपने को अज्ञानी और भगवान को पूर्ण ज्ञानी नहीं मानोगे तब तक भक्ति कैसे हो सकती है, क्या भक्ति बराबरी वालों की संभव है? क्या किसी ने आज तक अपने क्लास फेलो के चरण छू करके बोला कि तुझे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं, साष्टांग प्रणाम करता हूं, ऐसा हुआ कभी आज तक कभी ऐसा देखा आपने? तो भक्ति कभी बराबरी वालों की नहीं होती, भक्ति जिसमें गुणों की अधिकता होती है उसी की होती है। तो भरत ने जो पूजा की थी बाहुबली महाराज की, उम्र में छोटे थे बाहुबली, रिश्ते में छोटे भाई अनुज थे, लेकिन दीक्षा में अग्रज थे। रिश्ते में अनुज, दीक्षा में अग्रज, और ऐसी पूजा की भरत ने कि उस पूजा की पंक्तियां मुनिराज के कानों में पहुंच गई, और उन पंक्तियों को सुनकर बस उसमें कोई ऐसा हल्का सा भाव भरत ने डालने का प्रयास किया था कि जिससे उनका मन जो किसी कारण से अटक रहा है कहीं वो न अटके। और बाहुबली मुनिराज को शल्य थी ऐसा कहना तो जिन वाणी का अवर्णवाद है। अवर्णवाद यानी ये एक महामुनि पर झूठा दोषारोपण है, क्योंकि व्रति की परिभाषा में ही शल्य को नकार दिया है। कौन होता है व्रति? निःशल्यो व्रति। फिर ये तो महाव्रति है, जब सामान्य व्रति में ही शल्य संभव नहीं, कौन सी शल्य? माया शल्य, कर कुछ और रहे, अंदर कुछ और चल रहा है, यानी जो दिखावा है वो माया शल्य है। मिथ्या शल्य, कर रहे हैं लेकिन अंदर से लगता है कि पता नहीं ये सच है कि गलत है, विश्वास नहीं है, अश्रद्धा है, मिथ्या शल्य। और निदान शल्य, कर रहे हैं लेकिन उसके फल की चिंता लगी हुई है कि इतना कर रहा हूं, इतना कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, इसका फल कम ना हो जाए, भरपूर फल मिले। फल कौन सा? लौकिक फल। सांसारिक फल की कांक्षा से धर्म की आराधना करना शल्य है, निदान शल्य। तो इन तीनों शल्यों से एक प्रतिमाधारी हो तो भी उसके अंदर ये शल्य नहीं हो सकते। पांच व्रत तो होना अनिवार्य है व्रती के लिए, लेकिन पांच व्रतों के साथ इन शल्यों का अभाव भी जरूरी है। तो निश्शल्य होते हैं व्रती। तो बाहुबली भगवान को शल्य नहीं थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, उनको सिर्फ इस बात की पीड़ा थी कि मैंने दीक्षा लेते लेते किसी को बहुत पीड़ा पहुंचा दी, मैंने युद्ध किया और फिर दीक्षा ली, ये उनको तकलीफ थी। तो ये तकलीफ जो है ये करुणा भाव के अंतर्गत चली जाती है। किसी और की पीड़ा का अपने को दर्द हो, ये कौन सा भाव है? अनुकंपा। अपनी पीड़ा पर दुखी होना दया थोड़ी है, वो तो दुनिया होती है। अभी अगर एक मच्छर बैठ जाए तो जो तकलीफ होगी उसको दया कहोगे क्या? उसका नाम नहीं होता करुणा। करुणा तो किसी और की पीड़ा को देखकर अपने अंदर वैसा भाव आ जाता है, उसको कहते हैं। तो इस प्रकार जब भरत ने बड़ी कुशलता से उनकी पूजा की, और पूजा करते समय उन्होंने स्थितिकरण कर दिया साथ में। स्थितिकरण का मतलब कि जो प्रगति होनी चाहिए थी, जो काम हो जाना चाहिए इतनी तपस्या से, वो काम क्यों नहीं हो पा रहा है? तो बस जैसे ही वो बात आई उनको भी एहसास हो गया और उन्होंने उस बात को भी मन से निकाल दिया। वो पर्याय उस समय की थी। क्या? वो जो घटना हुई थी वो साल भर पहले हुई थी, वो अतीत हो गया, बीत चुका। बीती हुई घटना मुझे प्रगति से रोक रही है, ये उचित नहीं। और मुझे प्रगति से वास्तव में वो घटना नहीं रोक रही है, उस घटना का स्मरण करके जो मैं विचार कर रहा हूं वो विचार मेरे लिए बाधक बन रहा है। बस छोड़ दिया उन्होंने, बस उसी समय केवल ज्ञान हो गया। अभी मुनि बाहुबली की पूजा की भरत ने, और अंतर्मुहूर्त बाद भगवान बाहुबली की पूजा भी कर ली। और उस समय फिर वो इंद्रादि देवता भी आ गए। और उसके बाद हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि बाहुबली भगवान आदिनाथ स्वामी के समवसरण में मुनियों के कक्ष में जाकर विराजमान हो गए, समवसरण में चले गए, ऐसा उल्लेख आता है। जटाएं तो बढ़ गई थी, एक साल तक खड़े रहे, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने आहार नहीं लिया, कुछ नहीं, बाल तो बढ़ गए थे। लेकिन बात यह चल रही है कि वो बाहुबली भरत जैसे पुण्यवंत चक्रवर्ती को भी हराने में कारण बन गए। तो संसार में इस अनुप्रेक्षा में ये बताया जा रहा है कि कोई भी तृप्त नहीं हो सकता इस संसार में, और बहुत पुण्यशाली को भी सब पदार्थों का संयोग नहीं मिल पाता, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने 6 खंड जीते थे, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि 7वां खंड होता तो अच्छा होता, उसको भी जीतता। यानी तृप्ति होती नहीं कभी इच्छाओं को, और ऐसा पुण्य भी किसी के पास नहीं होता कि जो इच्छा करो सब कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। सबकी पूर्ति किसी पुण्य से संभव नहीं है। किसी के यहाँ पत्नी नहीं है, किसी के यहाँ पुत्र नहीं है, किसी के यहाँ पत्नी और पुत्र है लेकिन उसका शरीर निरोग नहीं है। किसी का शरीर निरोग है तो धन संपत्ति नहीं है, किसी के पास धन संपत्ति है तो वो अल्पायु है, लंबी आयु तक वो जी नहीं पाता। किसी की पत्नी दुष्ट होती है, किसी का पुत्र व्यसनी होता है, किसी का भाई दुश्मन होता है, और किसी की बेटी गलत रास्ता पकड़ लेती है, और कभी अच्छा पुत्र भी हो गया तो वो असमय में मरण को प्राप्त हो जाता है, और कोई इष्ट स्त्री यानी अनुकूल पत्नी मिल गई तो उसका भी किसी कारण से वियोग हो जाता है, किसी का घर या कुटुंब अग्नि में भस्म हो जाता है, अथवा अग्नि को उपलक्षण मान लो किसी अन्य दुर्घटना से भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी एक साल भी नहीं हुआ है, दिसंबर के महीने में अंतिम सप्ताह जब चल रहा था, सुनामी लहरें आई और कितने लोग उसमें प्रलीन हो गए, नष्ट हो गए। कोई भी कारण बन जाता है, कर्म योग से क्या नहीं हो सकता। इस प्रकार मनुष्य गति में अनेक दुखों को सहता हुआ भी यह जीव अपनी मति को, अपनी बुद्धि को धर्म में नहीं लगाता, बल्कि हाय पैसा हाय धन उसी में इसका जीवन बर्बाद हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता। फिर संसार में कुछ स्थाई भी तो नहीं है ना, धनवान है निर्धन बन जाता है, और जो धनहीन है निर्धन है वो भी धनवान बन जाता है। राजा नौकर बन जाता है और नौकर राजा बन जाता है। ये दृष्टांत तो कल जो कथा चल रही है, दोपहर में चलने वाली है, उसमें चालू ही है अपना। शत्रु मित्र बन जाता है, मित्र कभी शत्रु बन जाता है, और कर्मों के परिणाम वश यह सब कुछ घटित होता रहता है। बस संसार का यही स्वभाव है। और फिर इन तीन गतियों से अलग एक देव गति है, उस देव गति में क्या होता है फिर देखिएगा।